नमस्कार, भारत तारीख 27 अगस्त दिन शनिवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। कश्मीर में जारी अशांति को 50 दिन पूरे, अलगाववादी नेता गिलानी ने महबूबा मुफ्ती को दिया जवाब।
95% उसके उनके साथ हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई रेफरेंडम करवा लीजिए, अगर आप ही जीतेंगे रेफरेंडम में हम हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे।
क्या हो हल, पीएम मोदी से आज मिलेंगी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। क्या बलूचिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं, जानेंगे ये भी। और मध्य प्रदेश में सरकार मुफ्त बांट रही है प्याज।
गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि हम जो राशन दुकानें हैं उनको निशुल्क देंगे, उसको वो अपने जो राशन कार्ड धारी है उनको 1 रुपए किलो में बेचेंगे।
होंगी खबरें खेल की भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमर शर्मा से। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। घाटी में 8 अगस्त के बाद से ही तनाव हालात पूर्ण बने हुए हैं। हिजबुल के स्थानीय कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद से वहां हिंसा और प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक करीब 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कल हुई हिंसा में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। रूस के साथ चली लंबी वार्ता के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि सीरिया में संघर्ष विराम को जारी रखने के लिए रणनीति पर स्थिति साफ हो गई है। कैरी ने कहा कि सीरिया के ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम कि संघर्ष विराम को जारी रखने के प्रयास हो रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव के साथ वार्ता के बाद जॉन कैरी ने कहा,
We have a few narrow issues to resolve. And in the next days, our experts...
हमारे सामने सुलझाने के लिए बहुत मामूली मसले बचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमारे विशेषज्ञ जिनेवा में मिलेंगे ताकि बाकी बचे तकनीकी मुद्दों को सुलझाकर आगे बढ़ा जा सके और सभी पक्षों में मौजूद गहरे अविश्वास को दूर कर विश्वास बहाल किया जा सके। जिनेवा में बीबीसी संवाददाता ने बताया है कि रूस और अमरीका दोनों के लिए ही सीरिया में लड़ाई कर रहे अनेक समूहों को संघर्ष विराम के लिए राजी कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। फ्रांस की उच्चतम अदालत ने एक तटीय शहर विल्नौ लूबे में मुस्लिम महिलाओं के पूरे शरीर ढकने वाले स्विम सूट यानी बुरकिनी पहनने पर लगी रोक को खारिज कर दिया है। अब माना जा रहा है कि फ्रांस के करीब 30 शहरों में लगाए गए प्रतिबंध के निर्णय पलट जाएंगे, लेकिन 3 शहरों नीस, फ्रेजुइस और सिस्को के मेयर ने कहा है कि वे कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। चेक गणराज्य और हंगरी के नेताओं का कहना है कि यूरोपीय संघ में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक साझा यूरोपीय सेना की दरकार है। वार्सो में जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से बातचीत से पहले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टोर ऑर्बोन ने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा प्राथमिक है। चेक प्रधानमंत्री बोहुस्लाव सोबोटको ने भी इस विचार से सहमति जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि यूरोपीय सेना बनाना इतना आसान नहीं होगा। ब्रिटेन के नाटो की मौजूदगी के बाहर ऐसे किसी भी पहल का कड़ा विरोध किया है। यूरोपीय संघ के पास 1500 सैनिक का समूह है, लेकिन उन्हें अब तक किसी भी लड़ाई में तैनात नहीं किया गया है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगावे ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि लोकतंत्र के समर्थन में हुई अरब क्रांति जैसा कोई आंदोलन उनके देश में संभव नहीं है। मुगावे ने आरोप लगाया कि राजधानी हरारे में कल फैली अशांति के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। विपक्षी दलों ने साल 2018 में होने वाले चुनावों से पहले चुनाव सुधार के लिए प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस ने लाठीचार्ज, पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद प्रदर्शन ने उपद्रव की शक्ल ले ली। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और टायर जलाए, हालांकि कोर्ट ने प्रदर्शन की इजाजत दे रखी थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी की हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। बात कार्यक्रम में सबसे पहले भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की, जहां खासतर कश्मीर घाटी की, जहां जारी अशांति को 50 दिन पूरे हो गए हैं। इन 50 दिनों में कर्फ्यू, मौतें, पैलेट गनों के छर्रे, पत्थरबाजी और प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में रहे, लेकिन इन हालात से कैसे निकला जाए इसकी कोई ठोस योजना अब भी सामने नहीं दिखती है। और आज जब जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी तो दोनों नेताओं के सामने यही सवाल खड़ा होगा। इस बीच कल भी भारत प्रशासित कश्मीर में आज़ादी मांगने वाले फिर सड़कों पर उतरे और हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक को भी गिरफ्तार किया गया। कल के प्रदर्शनों में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। پورا بیورا شنگر سے ریاض مسرور کی زبانی.
پچھلے 50 دن سے گھاٹی ایک جیل بن کر رہ گئی ہے. الگاوادیوں نے آج سری نگر میں استھت بھارتی سینا کی 15ویں کور کے ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کرنے کی اپیل کی ہے. اس اپیل کو دیکھتے ہوئے سینا اور پولیس نے کل ہی لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ جانی نقصان کو بچانے کے لیے پردرشنوں کے نکٹ نہ جائیں. پولیس کا کہنا ہے کہ پردرشنوں میں چرم پنتھی بھی ہوتے ہیں جو پولیس پر گرینیڈ پھینکتے ہیں اور فائرنگ بھی کرتے ہیں. کل بھی جمعہ کی نماز کے بعد دکشنی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں پردرشنکاریوں کے ساتھ مڑ بھیڑ کے بعد فورسز نے فائرنگ کی جس میں ایک یوا مارا گیا. مرتیوں کی تازہ گھٹنا کے بعد پوری گھاٹی میں پردرشنوں کی تازہ لہر پھیل گئی ہے. تناؤ کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے سبھی 10 ضلعوں میں کرفیو کو اور سخت کر دیا ہے. الگاوادی نیتا میروائز عمر فاروق کو مارچ کے پریاس کے دوران گرفتار کیا گیا. حریت کے پروکتا کا کہنا ہے کہ انہیں اجیات جگہ پر قید کیا گیا ہے. پولیس اور سینا نے کل شام جاری کیے گئے الگ الگ وکتویوں میں کہا کہ پردرشنکاریوں کے بیچ چرم پنتھی ہوتے ہیں جو فورسز پر فائرنگ کرتے ہیں اور گرینیڈ پھینکتے ہیں. پولیس نے ایسے 1000 ویکتیوں کی لسٹ بھی بنائی ہے جن پر آروپ ہے کہ وہ لوگوں کو پردرشن کرنے پر اکساتے ہیں. گورتلب ہے بدھوار کو گرہ منتری راجناتھ سنگھ نے 2 دن کی سری نگر یاترا کے بعد گھوشنا کی تھی کہ کچھ ہی ہفتوں میں پیلٹ گن کا وکلپ ڈھونڈا جائے گا, لیکن کل ہی کئی جگہوں پر پردرشن ہوئے اور پردرشنکاریوں پر پیلٹ فائر کیے گئے جبکہ ایک یوا بھی مارا گیا. راجناتھ سنگھ کی سری نگر میں اپستھتی کے دوران بھی ایک یوا مارا گیا. گرہ منتری کے ساتھ ساجھی پریس کانفرنس کے دوران مکھیہ منتری نے بھی کڑا رخ اپناتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو اکسانے والوں کے ورودھ کاروائی کی جا رہی ہے.
پیسفل مین سے ہل جاتے ہیں, ڈائلگ سے جاتے ہیں. 5% لوگ ہمارے بچوں کو شیل بنا کے فوجوں کیمپس پہ حملہ کرواتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچے مر جائیں, اندھے ہو جائیں.
محبوبہ مفتی کئی دن سے یہ کہہ رہی ہیں کہ 95% لوگ شانتی چاہتے ہیں. اس پر حریت کے نیتا سعید علی گیلانی نے اپنی پرتکریا یوں ظاہر کی.
95% اس کے ان کے ساتھ ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ریفرنڈم کروا لیجئے, اگر آپ ہی جیتیں گے ریفرنڈم میں ہم ہندوستان کے ساتھ ہی رہیں گے. اگر ریفرنڈم میں ہندوستان کے ہی حق میں ووٹ آ گیا.
50 دن سے کشمیر بند ہے اور راجنیتک استھرتا ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. کئی ورگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ سرکار غائب ہو گئی ہے. اس بیچ مکھیہ منتری پر دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ الگاوادیوں کے ساتھ بات چیت کی کوئی پالیسی ابھی تک نہیں اپنائی گئی ہے. انومان لگایا جا رہا ہے کہ محبوبہ مفتی آج دلی میں پردھان منتری نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کے دوران بات چیت کی ہی وکالت کریں گی, لیکن کچھ سوتروں کا کہنا ہے کہ راجناتھ سنگھ کی کشمیر یاترا کے بعد مکھیہ منتری کو دلی طلب کیا گیا ہے. 8 اگست کو آندولن کا 1 مہینہ پورا ہونے پر بھی محبوبہ مفتی نے پردھان منتری سے ملنے کا پریاس کیا تھا, لیکن اس وقت ان کی ملاقات صرف راجناتھ سنگھ کے ساتھ ہو پائی. غورطلب ہے کہ کچھ دن پہلے ہی پردھان منتری نریندر مودی نے کشمیر کے لیے استھائی راجنیتک حل کی بات کی تھی. 50 دنوں کے آندولن میں اب تک 65 سے ادھک لوگ مارے گئے ہیں اور 8000 سے ادھک گائل ہیں. گرہ منتری راجناتھ سنگھ نے بتایا ہے کہ 4000 سے ادھک سرکشا کرمی بھی پردرشنوں کے دوران گائل ہوئے ہیں. کشمیر میں استھتی پر قابو پانے کے لیے CRPF کے ساتھ ساتھ اب BSF کی 26 کمپنیوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے. ریاض مسرور, BBC سری نگر.
کشمیر کے جس طرح کے حالات ریاض مسرور بیان کر رہے تھے ان سے صاف ہے کہ راجیہ سرکار اور الگاؤ وادیوں کے بیچ کوئی تال میل نہیں ہے. کیندر کی سرکار نے بھی الگاؤ وادیوں سے بات کرنے کے کوئی سنکیت نہیں دیے ہیں. ایسے میں آج ہونے والی پردھان منتری نریندر مودی اور مکھیہ منتری محبوبہ مفتی کی ملاقات سے کیا امیدیں لگائی جائیں, یہی پوچھا ہمارے ساتھی واتسلیہ رائے نے شری نگر میں وشلیشک بشیر منظر سے.
جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا کشمیر میں کچھ امیدیں بندھی ہیں اس ملاقات کے حوالے سے, ویسا کچھ ماحول دکھتا نہیں ہے کیونکہ ہوم منسٹر دوبارہ آئے, حالانکہ جو کل وہ آئے تھے یہاں پہ ان نے کچھ باتیں کی جو بڑی پازیٹیو لگ رہی تھی. وہ یہ کہ ان نے کہا تھا کہ بات چیت ہو سکتی ہے, سب کے ساتھ ہو سکتی ہے, انسانیت جمہوریت کشمیریت کے دائرے میں ہو سکتی ہے. دوسرا ان نے ریگریٹ کیا کہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. تیسرا ان نے کہا کہ پیلٹ گنز کا آلٹرنیٹو ڈھونڈا جائے گا. یہ کچھ پازیٹیو سگنلز تھے, لیکن دیکھا جائے تو 50 دن کا وقفہ بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے. اس وقفے میں ابھی تک نیو دہلی سے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے جو یہاں ٹیمپرز کو تھوڑا کام کر سکتی, جس سے کشمیری لوگوں کو لگتا نہیں کہ ہمارے بارے میں کہیں سوچا جا رہا ہے. اس لیے اتنی زیادہ امیدیں نہیں ہیں کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر محبوبہ مفتی کی جو میٹنگ ہوگی اس سے کیا نکل کے آتا ہے.
اس ٹائمنگ کو لے کر آپ کیا کہیں گے, یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جب 1 مہینہ ہوا تھا انریس کو اس سمے بھی مکھیہ منتری دلی میں تھیں, ان کی گرہ منتری سے ملاقات ہوئی, ان کی رکشا منتری سے ملاقات ہوئی, لیکن اس وقت پردھان منتری سے ملاقات نہیں ہوئی. اس بار یہ خاص طور پر پردھان منتری سے ملاقات کے لیے دلی میں ہے.
جہاں تک میرا اندازہ, مجھے لگتا ہے کہ اب میرے خیال میں اب نیو دہلی میں کہیں نہ کہیں سیریسلی اس بات کو सोचा जा रहा है कि ये मसला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा रिपीटेडली जो भी इंडिकेशंस मिल रही थी वो ये थी कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर मसला है, पाकिस्तान करवा रहा है, वो करवा रहा है, ये करवा रहा है। लेकिन आज 50 दिन गुजर गए, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं और ये जो अनरेस्ट है कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। कश्मीर में कर्फ्यू भी है, हड़तालें भी हैं, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, प्रोसेशंस भी हैं, एजिटेशंस भी चल रही हैं, और उन इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह पॉलिटिकल आस्पेक्ट को टैकल किया जाए। सेपरेटिस्ट है, यहाँ आपके बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करने के लिए क्या कोशिश की जाए, मेरे ख्याल में उस पर बातचीत हो सकती है।
एक तरफ मुख्यमंत्री कहती हैं कि 95% लोग समस्या का शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान चाहते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है वो सेम पेज पर नहीं है। इन हालात में आपको क्या लगता है?
जो भी अपोजिशन पार्टीज होती हैं उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा उसको लेके चलते हैं। अगर रियासत जम्मू कश्मीर में भी आप देखें, यहाँ भी जो अपोजिशन है उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, अपनी वो पॉइंट स्कोर करने की गेम है। लेकिन जहाँ तक रियासती सरकार, यहाँ के राज्य की सरकार और सेंटर की सरकार का सवाल है, अभी तक वाकई उनकी तरफ से कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुआ कि कश्मीर के हवाले से पॉलिटिकल डायमेंशंस की बात की जाए। लेकिन अब जाके शायद कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है कि इसको आपने इससे बियॉन्ड भी सोचना है, आपको इसका पॉलिटिकल एंगल लेके इस मसले को देखना है। आप कैसे रीच आउट करते हैं कश्मीरी लोगों की तरफ? रीच आउट करने का मतलब यह है कि क्या आप बातचीत के दरवाजे खोल देते हैं? देखिए, यहाँ PDP और BJP सरकार में है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अपोजिशन में है, उनके साथ तो आप बातचीत करते ही रहते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा तबका है यहाँ पे, जिनको उलगावादी कहते हैं आप लोग, और कुछ लोग यहाँ पे आज़ादी पसंद लीडर कहते हैं, उनको अलग रख के मुझे नहीं लगता मसाइल का हल हो सकता है। जब ये कहते हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी का फार्मूला अपनाएंगे, तो उसमें ज़रूरी तौर ये बात आती है कि आप हुर्रियत लीडर्स के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे नेगोशिएशन का एक दरवाज़ा खोल दें। ये नहीं हो सकता कि इमिजिएटली बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दरवाज़ा खुलना चाहिए, तब जाके शायद हालात में कुछ सुधार आ सकता है।
अलगाववादियों से करना होगा संपर्क, ये कह रहे थे बशीर मंजर, विश्लेषक, श्रीनगर से। और उधर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर ना तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के पास कोई स्पष्ट रणनीति है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर:
अच्छा मौका है जब ये दोनों मिलेंगे, दोनों हेड, सेंटर के प्रधानमंत्री और रियासत के चीफ मिनिस्टर, उनको इंटरनली बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि हमारा रोड मैप क्या है। अगर इनके पास दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ में प्लान है स्टेट और खसूसन वादी के एंड्रेस को कैसे ब्रेक करें, उसके बाद पार्ट टू है जो ऑलरेडी इन दोनों लीडरों ने अपनी अलायंस बनाते वक्त BJP और PDP ने क्लियर कर दिया है मैसेज कि दैट वी विल टॉक टू ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिटिकल प्रॉब्लम। उन्होंने कहा है कि हम हुर्रियत से भी बात करें। मुझे समझ में नहीं आता है कि आज ये 1.5 साल के बाद आपस में ये क्यों इसी पर रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। एक क्लियर कट सिग्नल दोनों के मिलने के बाद में आनी चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता है कि अगर खाली मुलाकातों का ही दौर रहना है, आना और जाना है, तो इससे कोई हल निकल आएगा।
ये थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर। भारत को जिस तरह के हालात का सामना कश्मीर घाटी में करना पड़ रहा है, पाकिस्तान भी कुछ वैसी ही स्थिति से अपने प्रांत बलूचिस्तान में दोचार है, और इसके लिए दोनों देश अपने यहाँ गड़बड़ी फैलाने का आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लाल किले से अपने भाषण में बलूचिस्तान के हालात का जिक्र किया था, जिस पर पाकिस्तान ने कड़ी नाराजगी जताई थी। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी का कहना है कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान में हो रही ज्यादतियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो जाहिर है दूसरों को बोलने का मौका मिलेगा। ये बात उन्होंने शुक्रवार को बलोच नेता नवाब अकबर खान बुकटी की 10वीं बरसी के मौके पर वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के साथ बातचीत में कही। आप भी सुनिए ये बातचीत।
اگر کسی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، مسائل ہوں گے تو، اور وہ اس کو خود ایڈریس نہیں کرے گا تو دوسرے اس کے اوپر بولنا شروع کر دیں گے۔ میرا دل خوش نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندرونی مسائل پر دوسرے ممالک کے رہنما بات کریں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے ہی وزیراعظم کیوں نہ ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان بھارت کو اور بھارت پاکستان کو پرووک کرتا رہے گا تو دونوں طرف سے اس قسم کے بیانات ہوتے رہیں گے۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے اوپر بھارت توجہ کرے، پاکستان میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، کراچی، وہاں ہونے والے معاملات پر پاکستان توجہ کرے۔ ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے رہیں گے، بیانات دیتے رہیں گے تو صرف تعلقات خراب ہوں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔
آپ نے جو کتاب لکھی ہے انڈیا ورسز پاکستان، وائی کانٹ وی بی فرینڈز، کیا یہ ایک طرح سے اسی کی مثال تھی جو پردھان منتری مودی کر رہے تھے؟ آپ کی ٹٹ فار ٹیٹ والی بات تھی؟
میرا یہ خیال ہے کہ پردھان منتری مودی نے ایک قسم کا چیلنج دیا ہے پاکستان کو کہ اگر تم ہمارے بارے میں اپنا رویہ تبدیل نہیں کرو گے تو ہم بھی ایک نیا رویہ پیدا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے سے یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف بہت کچھ کر رہا ہے، انڈیا کہتا ہے ہم نہیں کر رہے، مگر اب یہ کہہ کر انہوں نے جس کو کہتے ہیں ہیٹ بڑھا دی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے دونوں ممالک کا فائدہ نہیں ہے۔ ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، اور پاکستان کو بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جس فضا کے اندر دوسرے ملک کا پرائم منسٹر اس قسم کی بات کہہ سکتا ہے۔
بلوچستان کے لوگ جس طرح سے پردھان منتری مودی کے بیان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے حق میں ہے یہ؟
بلوچ بہت زیادہ مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ہیلی کاپٹر گن شپ سے ان کے اوپر بمباری، کل اینڈ ڈمپ کی پالیسی، یہ سب چیزیں ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ان چیزوں سے بلوچستان کو پاکستان میں رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بلوچوں کے دل کو پاکستان سے جوڑا جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بلوچوں کو غیر ملکی مداخلت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پاکستان کو فوجی طاقت کے استعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
بھارت چاہے بھی تو کیا وہاں بنگلہ دیش جیسی استھتی پیدا کر سکتا ہے؟
بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بھارت بنگلہ دیش کے تین طرف تھا، بلوچستان سے بہت دور ہے، تو بھارت بلوچستان میں گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے لیکن بلوچستان کو الگ نہیں کرا سکتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ پاکستان کے اپنے نیتا بلوچ نیتاؤں سے بات کریں اور بلوچستان کو پاکستان میں ہنسی خوشی رضامندی کے ساتھ رکھیں۔ پاکستان کی سرکار کا بلوچوں کے ساتھ بات چیت کرنا بلوچوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طریقے کے ساتھ انڈیا کو بھی اب کشمیر کے معاملے کو ہمیشہ نظر انداز کرنے کی پالیسی ختم کرنی چاہیے، اور کشمیر کے لوگوں سے بات کر کے وہاں معاملات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ یاد رہے کہ کشمیر ابھی بھی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، بلوچستان انٹرنیشنل ڈسپیوٹ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی چیز کبھی بھی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بن سکتی ہے اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہونے سے ختم ہو سکتی ہے۔
یہ تھے امریکہ میں پاکستان کے پورو راجدوت حسین حقانی، اور ان سے بات کر رہے تھے بی بی سی سنواداتا برجیش اپادھیائے۔
بی بی سی انڈیا بول۔
کرائے کی کوکھ، مجبوری یا ولاسیتا؟ کیندری منتری منڈل نے حال ہی میں سروگیسی یا بچے پیدا کرنے کے لیے مہیلاؤں کی کوکھ کرائے پر لینے سمبندھی ودھیک کو منظوری دی ہے۔ بی جے پی نیتا سشما سوراج نے سروگیسی کو ولاسیتا بتایا اور کہا امیر مہیلائیں پرسو پیڑا سے بچنے کے لیے دوسری مہیلاؤں کی کوکھ کرائے پر لیتی ہیں۔ کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں؟ ہمیں بتائیے اس شنیوار 27 اگست شام 7:30 بجے انڈیا بول میں۔ کاریکرم میں حصہ لینے کے لیے مفت فون کیجیے 1811-7000 یا 1800-102-7001 پر۔
بی بی سی انڈیا بول۔
پیاز ایک ایسی چیز ہے جو سرکاروں کی آنکھوں میں بھی اکثر آنسو لے آتی ہے۔ پیاز مہنگا ہو تو مشکل، سستا ہو تو پریشانی۔ اب مدھیہ پردیش سرکار پیاز مفت بانٹنے جا رہی ہے، کیونکہ سرکاری گوداموں میں پیاز سڑ رہا ہے اور سرکار کو اس سے نپٹنے کی کوئی دوسری صورت نظر نہیں آ رہی۔ سوموار سے یہ پیاز سرکاری دکانوں میں مفت بٹنا شروع ہو جائے گا۔ راشن ڈیلر لانے لے جانے کے خرچے کے طور پر پرتی کلو صرف 1 روپیہ لے سکیں گے۔ بھوپال سے شرنیازی کی رپورٹ۔
کئی سرکاروں کے لیے مصیبت بنی پیاز کے حالات اب یہ ہو گئے ہیں کہ مدھیہ پردیش سرکار اسے مفت میں لوگوں کو دینے جا رہی ہے۔ سوموار سے پردیش کی راشن دکانوں میں پیاز ملنا شروع ہو جائے گی۔ ہر راشن کارڈ دھاری کو 25 کلو پیاز دی جا سکے گی۔ वहीं राशन दुकान वाले इसके लिए एक रुपए परिवहन शुल्क के तौर पर ले सकेंगे। सरकार को यह कदम इस वजह से उठाना पड़ा कि गोदामों में खरीदी गई प्याज पानी की वजह से खराब होने लगी थी। कलेक्टरों को राशन दुकान से प्याज बांटने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के जनरल मैनेजर योगेश जोशी ने बताया,
इसको हमने गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि हम जो राशन दुकानें हैं उनको निशुल्क देंगे, उसको वो अपने जो राशन कार्ड धारी है उनको एक रुपए किलो में बेचेंगे। एक रुपए किलो इसलिए कि जो उनका राशन दुकानों को जो ये होगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वर्चा, क्योंकि गोदाम से ले जाना पड़ेगा इनको जहाँ भंडारी थे वहाँ से, तो उसका एक रुपया इनका ये खर्चा निकल जाए, और प्रत्येक राशन कार्ड धारी को 25 किलो देंगे एक कार्ड। ये तो जो अलग अलग गोदामों में है ये कलेक्टर को अधिकार दिए हैं कि वो गोदाम के हिसाब से दुकानों को मैपिंग करें कि कौन से राशन दुकान को कौन सा गोदाम पास में।
मध्य प्रदेश में इस साल अच्छे मुनाफे की उम्मीद में किसानों ने प्याज बहुत ज्यादा लगाई। इस बार पैदावार भी बहुत अधिक हुई, जिसके चलते नीमच मंडी में एक वक्त इसकी कीमत 20 से 30 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई। परेशान किसानों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 रुपए प्रति किलो के दाम से किसानों से प्याज खरीदी। गोदामों में रखी प्याज को बेचने की कोशिश सरकार ने कई बार की, लेकिन उन्हें उसकी उचित कीमत नहीं मिली। आखिरकार सरकार ने इसे मुफ्त में देने का निर्णय लिया। इसके चलते सरकार को लगभग 100 करोड़ का नुकसान होगा। सरकार ने लगभग 10.5 लाख क्विंटल प्याज किसानों से खरीदी थी। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
वहीं महाराष्ट्र में प्याज के दाम गिर रहे हैं। किसान और प्याज के व्यापारी चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे। मुंबई से अश्विन अघूर की रिपोर्ट।
बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमतें किसानों तथा व्यापारियों को रुला रही है। 2 दिन पहले नाशिक के बाजार में प्याज को 5 पैसे प्रति किलो कीमत दी गई थी, जो न सिर्फ किसानों बल्कि जनता के लिए भी एक बड़ा झटका था। शुक्रवार को मुंबई एपीएमसी मार्केट में प्याज की कीमतें 6 से 9 रुपए किलो के बीच थी। मुंबई एपीएमसी में प्याज के व्यापारी अशोक वालुंज ने बताया,
ये तो भाव अभी 15 दिन से यही भाव है, तो माल ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा की वजह से एक्सपोर्ट की जितनी मांग हो रही थी उतनी मांग नहीं है, एक्सपोर्ट कम जा रहा है।
ये थे अशोक वालुंज। प्याज की गिरती कीमतों को देखते हुए किसान चाहते हैं कि अब मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी प्याज खरीद कर उनकी मदद करे। अशोक वारुंज कहते हैं,
गवर्नमेंट का रोल इसमें इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट जिस तरह से कोई भी ऐसी आपत्ति आती है तो गवर्नमेंट उनको नुकसान भरपाई देती है, उस टाइम से ये प्याज का मसला तो पूरे महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र शासन ने उनका माल परचेज करना चाहिए गवर्नमेंट ने।
प्याज की कीमतें बढ़े तो जनता को रुलाता है, और यदि घट जाए तो किसानों को। परिस्थिति में सुधार लाने के लिए और किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग हो रही है। अश्विन अघोर, बीबीसी मुंबई।
और अब कार्यक्रम में समय आ गया है ये जानने का कि आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ छपा है, अखबारों के पुलिंदे के साथ उनको विश्लेषण, क्या हेडलाइन है, क्या सुर्खियां हैं, क्या कार्टून है, सब कुछ बताएंगे। अमर शर्मा मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं अमर आज के अखबार?
जी अशोक, जैसा कि आज हिंदी के तमाम अखबार में, दिल्ली से छपने वाले तमाम अखबारों में, हाजी अली मजार पर जा सकेंगी महिलाएं, इसको उन्होंने अपनी लीड खबर बनाया है
जी।
और इस खबर को अंग्रेज़ी अखबारों ने भी बहुत तवज्जो दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे पहले पन्ने पर बहुत प्रमुखता से छापा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू अखबार ने भी इसे अपनी पहली खबर बनाया है।
जश्न मनाती महिलाओं की तस्वीरें सब अखबारों में मुझे दिखाई दे रही हैं कि काफ़ी वो मेरे ख्याल से प्रयास कर रही थी, तो उन्हें लग रहा है कि उनकी कोशिशें रंग लाई हैं
जी। लेकिन उन्हें अभी 6 सप्ताह का और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। ट्रस्ट को ये हाईकोर्ट ने मौका दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके
अगर किसी को इस पर आपत्ति है
तो। जी जी, और उन्होंने कहा है उन्हें आपत्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, हाजी अली ट्रस्ट ने कहा है। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, कल ओलंपिक खेलों के लिए कार्य योजना तैयार करेगी ये टास्क फोर्स। और नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक के दौरान उन्होंने ये फैसला किया और घोषणा किया है। और इस खबर को भी बहुत प्रमुखता से छापा है तमाम अखबारों ने।
हाँ,
और
ये इंडिया टास्क फोर्स, बता दें अपने सुनने वालों को कि जो 2020, 2024 और 2028 में जो ओलंपिक खेल होंगे उनके लिए भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहतर रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी इस टास्क फोर्स पर होगी, क्योंकि जिस तरह से रियो में सिर्फ 2 पदक जीतने को लेकर काफ़ी आलोचना हुई एक तरह से, हालांकि 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता, कई नए खिलाड़ी उभरे,
118 टीम सदस्य भेजे गए थे इस ओलंपिक टीम में भारत की ओर से, उसमें हमारी 2 महिला खिलाड़ियों ने इसमें पदक जीता, ये बहुत खुशी की बात रही। और इसको लेकर एक नई तरह से बातचीत शुरू हुई है देश में कि लड़कियां लड़कों से बहुत आगे बढ़ चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको अपनी पहली लीड खबर बनाया है। वहीं आपको हिंदू द हिंदू में एक पहली खबर है लीड खबर के साथ में, जिसने बनाया है कि इंडियन स्पेंड्स 8 times मोर ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स देन ऑन गवर्नमेंट वंस, यानी भारतीय निजी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों की तुलना में 8 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और पहली पन्ने पर ही एक और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या कोर्ट के आदेश से राम राज्य आ सकता है। उन्होंने एक याचिका की सुनवाई के दौरान उन्होंने ऐसा कहा है कि क्या कोर्ट को हर मसलों पर हस्तक्षेप करना चाहिए। और एक और खबर है जिसको बहुत प्रमुखता से इन्होंने छापा है कि गो हत्या में अखलाक के परिवार को कोर्ट से राहत मिली है और उनकी गिरफ्तारी पर हालांकि रोक नहीं लगाई उनके भाई की गिरफ्तारी पर।
जी जी,
आपको ये बताएं दैनिक भास्कर की सुर्खियों में इन्होंने कहा है कि सहारा समूह के साथ जो विवाद चल रहा है कि सहारा को 300 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए तैयार हो गया है और ये राशि बैंक गारंटी में एडजस्ट करेंगे और ये अगले सुनवाई अगले हफ्ते होगी इस केस की। ये काफ़ी इंतज़ार है इस सुनवाई का भी। और
जी,
और मैं आपको बताऊं
इसके अलावा और भी कई खबरें हम देख पा रहे हैं, खासकर जो ये खबरें आप दैनिक भास्कर में ये जो खबर है ये आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या खबर कहती है, कुछ दिलचस्प खबर लग रही है।
ये काफ़ी दिलचस्प खबर है कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लड़कियों को 4 मुर्गी, 1 मुर्गा और एक पिंजरा देगी ताकि वो चूल्हे चौके में उनकी दिलचस्पी बढ़ जाए। ये पंजाब में, जहाँ भारत में लड़कियाँ खेल में आगे बढ़ रही हैं, वहीं पाकिस्तान में सरकार उनको उनकी चूल्हे चौके में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है।
बहुत-बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खेल की खबरें।
भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में पहला 2020 मुकाबला खेला जाएगा। वैसे दो मैचों के इस छोटी सी सीरीज में दोनों ही टीमों को आराम करने का अधिक अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा और अंतिम 2020 मुकाबला कल ही खेला जाएगा। भारत ने विराट कोहली की कप्तानी में भले ही वेस्टइंडीज से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की, लेकिन 2020 सीरीज में वेस्टइंडीज से पार पाने के लिए भारत को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भारत की कमान महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे और टीम में जाने पहचाने चेहरे रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा और अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव जैसे खिलाड़ी तो शामिल हैं ही। दूसरी तरफ आश्चर्यजनक रूप से वेस्टइंडीज की कमान केवल 8 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले कार्लोस ब्रैथवेट संभालेंगे, जबकि टीम में क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, किरेन पोलार्ड, मार्लोन सैमुअल्स और सुनील नारायण जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। वैसे ब्रैथवेट भारतीय खिलाड़ियों से बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि वो आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हैं। जानते तो भारतीय खिलाड़ियों को क्रिस गेल भी हैं और वो तो आईपीएल में विराट कोहली की कप्तानी में खेलने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के धाकड़ बल्लेबाज हैं। और ये वही वेस्टइंडीज टीम है जिसने इस साल भारत में ही समाप्त हुए 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत को सेमीफाइनल में 7 विकेट से करारी मात दी थी। बाद में वेस्टइंडीज ने फाइनल भी इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर जीता और चैंपियन बनने में कामयाब रहे। इसे देखते हुए माना जा सकता है कि दोनों टीमों के बीच आज कड़ा मुकाबला होगा। अगर भारत वेस्टइंडीज से दोनों मैच हारा तो आईसीसी 2020 रैंकिंग में दूसरे स्थान से खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, लेकिन भारतीय टीम के कोच अनिल कुंबले इसे अधिक महत्व नहीं देते।
Rankings, yes, of course. You know, it's at the back of everyone's mind, and you keep hearing about it.
हाँ, रैंकिंग हमेशा खिलाड़ियों के मन में रहती है। इससे ये भी पता चलता है कि आप कहाँ हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आप कुछ अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हमारे लिए वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज जीतना शानदार रहा। अगर आप देखें तो पहले 6 महीनों में भारत का 2020 रिकॉर्ड भी बेहतर है। इससे हमें दोनों मैचों में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
कोच अनिल कुंबले के शब्द। आप देखना है कि धोनी के धुरंधर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं।
और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। रूस के साथ लंबी वार्ता के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि सीरिया में संघर्ष विराम को जारी रखने के लिए रणनीति पर स्थिति साफ हो गई है। फ्रांस की उच्चतम अदालत ने एक तटीय शहर विल्नो लूबे में मुस्लिम महिलाओं के पूरे शरीर ढकने वाले स्विम सूट यानी बुरकिनी पहनने पर लगी रोक को खारिज कर दिया है। चेक गणराज्य और हंगरी के नेताओं का कहना है कि यूरोपीय संघ में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक साझा यूरोपीय सेना की दरकार है। बीबीसी समाचार।
और इसी के साथ नमस्कार भारत में अब समय आ गया है कि आपसे विदा ली जाए। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में। अशोक कुमार को अभी अनुमति दें। नमस्कार।